குலத்தனும் கஜேந்திர வதனம் லம்போதரம் சுந்தரம் பிரசந்தன்மத கந்தலுப்த மதுப வியாலோல கண்டஸ்தலம் தந்தாகாத விதாரி தாரி ருதிரை சிந்தூர் சோபாகரம் வந்தே ஷைல சுதா சுதம் கணபதிம் சித்தி பிரதம் காமதம்.
ஜோ நாட்டே ஔர் மோட்டே ஷரீர் வாலே ஹே ஜின்கா ஹாத்தி கே சமான் முக் ஔர் லம்பா பேட் ஹே ததா பஹத்தே ஹுயே மத் கி சுகந்த கே லோபி பௌரோ கே சாட்னே சே ஜின்கா கண்டஸ்தல் சபல் ஹோ ரஹா ஹே தாந்தோ கி சோட் சே விதீர்ண ஹுயே, விதீர்ண மத்லப் காயல் ஹுயே, சத்ருவோ கே கூன் சே ஜோ சிந்தூர் கிசி ஷோபா தாரண கர்த்தே ஹே காமனாவோ கி தாத்தா ஔர் சித்தி தேனே வாலே உன் பார்வதி கே புத்ர கணேஷ் ஜி கி மே வந்தனா கர்த்தி ஹூன். ஐ ப்ரே டு கணேஷ் ஜி, சன் ஆஃப் காட்டெஸ் பார்வதி, ஹூ இஸ் ஷார்ட் பட் ஹியூஜ், ஹூஸ் ஃபேஸ் இஸ் லைக் தி கிங் ஆஃப் எலிஃபென்ட்ஸ், ஹூ ஹேஸ் ஏ காஸ்மிக் பெலி, ஹூ இஸ் பியூட்டிஃபுல் டு லுக் ஆட், ஹூஸ் நெக் இஸ் மைல்ட்லி நிம்பிள் பை த பீஸ் அட்ராக்டட் டு இட்ஸ் இன்டாக்சிகேட்டிங் ஃப்ளோ ஆஃப் பர்ஃப்யூம்ட் நெக்டர், ஹூ இஸ் அடோன்ட் வித் வெர்மீலியன் கலர் ரிஃப்ளெக்டட் ஃப்ரம் தி எனிமீஸ் பிளட் produced by the attack of his tusks, and who is the bestower of fulfillment of all desires and accomplishments, and who is the son of mother Parvati. Main Gayatri Chhibbar, etymology vyutpatti, shabdon ki vishesh utpatti origin mein aapka swagat karti hu. Param supreme almighty, jab hum परम के विषय में बात करते हैं, परम के बारे में बात करते हैं, तो सभी का मत एक समान नहीं होता, सभी के विचार एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग मंदिर या घर में प्रतिष्ठित मूर्ति के विषय में बात करते हैं। जो मूर्तियां हम मंदिर में रखते हैं या अपने घर में रखते हैं, जब हम उनको लाने के बाद उनको स्नान आदि करा के विधिवत उनको स्थान दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, हम उसी को सुप्रीम कह देते हैं, उसी को भगवान कह देते हैं। वहीं कुछ लोग उस शक्ति के विषय में बात करते हैं जिसका अस्तित्व तो है पर अदृश्य है। कुछ लोग शक्ति यानी फोर्स एनर्जी इसके बारे में बात करते हैं कि जो एग्जिस्ट तो करती है, अस्तित्व तो है लेकिन अदृश्य है, दिखाई नहीं देती। अदृश्य दृश्य वर्ब से आता है जिसका अर्थ होता है देखना, और अदृश्य जो दिखाई ना दे, अदृश्य। तो वो फोर्स जो दिखाई नहीं देती उसके बारे में बात करते हैं, जो हमें चलायमान भी रखती है, मतलब जो हमको मूवमेंट देती है, हमारे सारे एक्शंस, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ है वो सब चलती रहती हैं। हमारा सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये सब क्रियाएँ हम किस प्रकार करते हैं हमको अभी तक पता नहीं है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कोई फोर्स है जिसकी वजह से हमारे ये सब कर्म होते हैं। महाभारत में जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन बहुत ही दुविधा में थे, असमंजस स्थिति में थे, दुविधा मतलब कंफ्यूज थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि मेरे सामने जो लोग खड़े हैं, जिनके विरुद्ध मुझे लड़ाई करनी है, जिनके अगेंस्ट मुझे लड़ना है, वो सब तो मेरे अपने हैं, वो मेरे गुरुजन हैं, कोई मेरे दादा हैं, कोई मेरे पिता हैं, कोई मेरे भाई हैं, तो उन सबके अगेंस्ट वो खड़े हुए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म का है, ना कि अपनों और परायों का, मैं तुम्हें धर्म का मार्ग दिखा रहा हूँ। फिर भी अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था तो भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, विशाल रूप दिखाया, तो अर्जुन ने कहा, त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्य पुरुषो मतो में। उसने कहा, आप अक्षर हैं, त्वम अक्षरम, आप अक्षर हैं, अक्षर अर्थात क्षर न होने वाला, अच्युत, जो कभी भी खिरता नहीं है, बिखरता नहीं है, परमं वेदितव्यम, आप वो परम गति हैं जिसको जानना चाहिए, वेदितव्यम गेय, जानना चाहिए। वेदितव्यम में विद धातु से आता है, विद धातु का अर्थ होता है जानना, और वेदितव्यम जानने योग्य। त्वमस्य विश्वस्य, आप इस विश्व के परम निधानम हो, परम आधार हो, निधानम आधार हो, विश्वस्य इस ब्रह्मांड के, इस संसार के, इस जगत के। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने मुख को खोल करके उस अर्जुन को ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे, तो उसने यही कहा कि आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हो। त्वम अव्यय, आप अव्यय हैं, आप अविनाशी हैं, आपका कभी विनाश नहीं हो सकता। शाश्वत धर्म गोप्ता, आप सदा धर्म के रक्षक हो। शाश्वत मतलब सदा, हमेशा। धर्म गोप्ता, गुप्ता मतलब जो रक्षक करता है, किसी चीज़ को संभाल के रखता है, तो धर्म गोप्ता, धर्म को संभालने वाले, धर्म के रक्षक। सनातनस्य, पुरुषों मतों में, मतों में, मैं मतलब मेरे मतों, मतों विचार में, मेरे विचार में आप सनातन पुरुष हैं। आप वो सनातन पुरुष हैं जिसको कोई भी नहीं जान सकता। यहाँ पर हम सनातन जब कहते हैं तो उसका अर्थ है शुरू से आखिर तक, आदि से अंत तक। क्योंकि हमने कभी, हम सदा सुनते आए हैं कि सनातन काल, सनातन काल, लेकिन सनातन क्या है वो हमको पूरी उसकी सही जानकारी नहीं है। हमने जिसका शुरू नहीं देखा, आदि नहीं देखा, और हमें ये भी नहीं पता कि इसका अंत कब होगा या कैसे होगा, तो इसलिए हम उसको सनातन कहते हैं। जब हम सुप्रीम की बात कर रहे हैं, परम की बात कर रहे हैं, तो हम अपने त्रिदेवों को भी बात कर रहे हैं। त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आते हैं, और ब्रह्मा उनमें पहला स्थान पाते हैं क्योंकि वो क्रिएटर हैं। यहाँ पर मैं ब्रह्मा के बारे में भी आपसे बात करूँगी कि उनको किन किन नामों से जाना जाता है। ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ कहा जाता है, अर्थात गोल्डन वोम। ऐसा कहते हैं कि वो सोने के अंडे से पैदा हुए। हिरण्य होता है गोल्डन। नाभिजा कहते हैं, नाभि से पैदा हुए हैं, नाभि मतलब नेवल। कनजा भी कहते हैं, कनजा पानी में पैदा हुए, कि उनका जन्म पानी में हुआ था इसलिए उनको कनजा कहा जाता है। कन जो है पानी कहते हैं। चतुर्भुजा, चार सशस्त्र, फोर आर्म्ड भी कहते हैं कि उनके चारों भुजाओं में शस्त्र थे इसलिए उनको चतुर्भुजा कहा जाता है। पद्मजा, कमल के फूल से पैदा हुए हैं ऐसा कहते हैं। अजजा अर्थात अजन्मा, अनबॉर्न, ऐसा कहते हैं कि वो पैदा ही नहीं हुए। और स्वयंभू, स्वयंभू मतलब सेल्फ एग्जिस्टिंग, कि वो खुद ही एग्जिस्ट कर रहे थे, खुद ही अस्तित्व में आ गए, स्वयं अपने आप, भू मतलब पैदा हो गए, तो स्वयंभू। चतुरानन विथ फोर फेसेस, चतुर, चार हैं मुख जिसके, चार हैं आनन जिसके, वो चतुरानन यानी ब्रह्मा। अष्टकर्णा, आठ हैं कान जिसके, विथ एट ईयर्स, इसलिए उनको अष्टकर्णा कहते हैं। हंस वाहना, वन हु राइड्स द स्वैन, मतलब हंस जिनका वाहन है, हंस जिनकी सवारी है, ऐसा उनको कहते हैं। प्रजापति, कबीले के लिए, मतलब फादर ऑफ द क्लैन, क्योंकि उनको कहा जाता है कि वो इस संसार के पालक हैं, पति हैं, लीडर हैं, इसलिए प्रजापति कहा जाता है। प्रजा को यहाँ पर संसार कहा गया है, और पति मतलब वन हु लीड्स, तो प्रजापति फादर ऑफ द क्लैन। उनको कैंटुर मुखा भी कहा जाता है कि उनको चार का सामना करना पड़ा इसलिए कैंटुर मुखा है। कैंटुर नाना चार चेहरों के साथ हैं तो उनका नाम ये भी है। ठहरते हैं कुछ पल के लिए, शीघ्र लौटेंगे। एटिमोलॉजी, व्युत्पत्ति अर्थात शब्दों की विशेष उत्पत्ति में आपका पुनः स्वागत है। मैंने पिछले एपिसोड में ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में बात की थी, अब हम आज बात करेंगे सामवेद। सामवेद, जब हम सामवेद के विषय में बात करते हैं तो साम शब्द का अर्थ होता है गायन, और इसीलिए इस वेद में गीत संगीत की अधिकता है। इसमें गीत और संगीत, गीत होता है गीयते इति गीता, और सम्यक रूपेण गीयते इति संगीता, तो गीत संगीत, इसमें गाना भी होता है और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी होता है, संगीत, जिससे कि गीत जो है वो एनहांस हो जाते हैं, उसको सुनने में वो और मधुर लगते हैं, तो इसकी इसमें बहुत अधिकता है, मतलब इन अबंडेंस। प्राचीन अर्थात बहुत पहले आर्य भी सामगान करते थे। हालांकि सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। इसमें 1575 के लगभग मंत्र हैं, पर 70 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के मंत्र हैं। कुछ मंत्र यजुर्वेद के हैं और कुछ मंत्र अथर्ववेद के भी पाए जाते हैं। फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सबसे अधिक है। प्रतिष्ठा मतलब इसका स्थान, ये सबसे ऊंचे स्थान पे आता है, क्योंकि इसका एक कारण है कि गीता में कृष्ण ने स्वयं कहा है, वेदानाम साम वेदो अस्मि, अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूँ। सभी वेदों के चुने हुए अंश, चुने हुए भाग इसमें सम्मिलित है, मतलब इसमें शामिल हैं। इसके दो भाग हैं, आर्चिक और गान। आर्चिक जो अर्चना करने के लिए, अर्थात पूजा के लिए, जब हम पूजा करते हैं उस समय जो मंत्र बोलते हैं उन मंत्रों को आर्चिक कहा जाता है। और जो गाने के लिए केवल प्रयोग में आते हैं, जिनको हम केवल गाने के लिए, मनोरंजन के लिए करते हैं, तो उनको हम गान कहते हैं। महाभारत में भी इसका अनुशासन पर्व में वर्णन आता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि महाभारत कई पर्वों में बटा हुआ है, तो उसमें जो अनुशासन पर्व है वहाँ पर भी इसका वर्णन आता है, वहाँ पर भी इसका जिक्र होता है। सामवेदश्च वेदानाम यजुषाम शतरुद्रीयम, मतलब वेदों में मैं सामवेद हूँ, जिससे इसका महत्व बताया गया है। सामवेद के विभिन्न मंत्रों के विधिवत जप आदि से रोग व्याधियों से मुक्त हुआ जा सकता है। सामवेद के विभिन्न मंत्र, मतलब अलग अलग मंत्रों के, तरह तरह के मंत्रों के विधिवत, जब आप उसको एक ऑर्डर में जब पूजा करते हो, जप करते हो, तो उससे रोग और व्याधि, रोग होते हैं जो हमारे शारीरिक होते हैं, व्याधियां भी शारीरिक भी होती हैं और मानसिक भी होती हैं, आधी व्याधि कहते हैं, आधी मानसिक और व्याधि शारीरिक, तो सभी तरह के रोग मानसिक व शारीरिक से मुक्त हुआ जा सकता है, बचा जा सकता है। कामनाओं की सिद्धि भी हो सकती है, यदि आप उसको एक चित्त होकर के, फोकस करके यदि आप पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, तो आपको अपना अभीष्ट फल मिल जाता है, जो आप चाहते हैं उस फल की आपको प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। त्रिवेणी मतलब तीन तरफ बहने वाली नदी, जैसे हमारी गंगा यमुना सरस्वती को त्रिवेणी कहा जाता है, उसी तरह से त्रिवेणी इसीलिए कहा जाता है कि वो तीन धाराएं हैं उसकी, तो सामवेद की भी तीन धाराएं हैं। ज्ञान योग है मतलब जहाँ पे आप ज्ञान से जुड़ सकते हो, योग का मतलब होता है जुड़ना, ज्ञान से जुड़ सकते हो आप, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो। कर्म योग से जुड़ सकते हो आप, एक्शन से जुड़ सकते हो, और आप भक्ति योग से जुड़ सकते हो कि आप पूजा पाठ करके भी अपनी इच्छा से अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हो। ऋषियों ने विशिष्ट रूप से मंत्रों का संकलन करके गायन की पद्धति विकसित की। ऋषियों ने, ऋषि कहते हैं जो तपस्या करते हैं, बहुत विचार करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, उसके बाद वो विशिष्ट रूप, मतलब विशेष रूप से इच्छा अनुसार, उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार मंत्रों का संकलन, संकलन मतलब इकट्ठा करना, संकलन में कल धातु होती है जिसका अर्थ होता है काउंट करना, तो मंत्रों का को इकट्ठा किया है और गाने की पद्धति, गाने के तरीके को विकास किया है। आज के विद्वान भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि समस्त स्वर, आज के स्कॉलर्स भी इस बात को मानते हैं, कि वो भी इसको एडमिट करते हैं कि समस्त स्वर, मतलब सारे स्वर, यानी सारे गामा, ये स्वर ताल, जैसे एक ताल, तीन ताल वगैरह, लय, मतलब वे लयबद्ध होने चाहिए, छंद, वे एक दोहे के रूप में, चौपाई के रूप में, कवित्व के रूप में होने चाहिए, गति, उनकी गति कैसी हो, किस तरह से उनका आरोह अवरोह हो, मंत्र, स्वर चिकित्सा, मतलब जो गाने, जो प्रोफेशनली गाते हैं वो सब स्वर चिकित्सा के बारे में भी जानते हैं कि स्वर को किस तरह से ऊंचा नीचा करना पड़ता है, कहाँ रोकना पड़ता है, कहाँ पे आलाप देना पड़ता है, इस तरह से। राग जैसे भैरवी, दीपक, मेघमलार, नृत्य, मुद्रा, भाव, जब नृत्य कला की जाती है, जब डांस फॉर्म्स होती हैं, तो उसमें मुद्राओं का क्या स्थान रहता है, किस तरह से वो इंडिकेट करते हैं, समझाते हैं मुद्रा बना के, उनमें भाव क्या रहता है, मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस जो आते हैं, ये सब सामवेद से ही निकले हैं। सामवेद को उद्गीतों का रस कहा गया है। उद्गीत मतलब जब गायन होता है, जब गाना चल रहा होता है, तो उस समय जो उतार चढ़ाव होते हैं, आरोह अवरोह होते हैं, तो हम उसमें खो जाते हैं, हमें आनंद आने लगता है, तो इसलिए इसको उद्गीतों का रस कहा गया है। छांदोग्य बृहदारण्यक, जो कि शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद हैं, उसमें सामवेद और ऋग्वेद को पति पत्नी के जोड़े के रूप में दिखाया गया है। ऐसा कहते हैं हमारे जो उपनिषद हैं, उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी। तो ये दो बड़े उपनिषद हैं, छांदोग्य और बृहदारण्यक, जो कि शुक्ल यजुर्वेद के ही उपनिषद हैं, उसमें सामवेद और ऋग्वेद को पति पत्नी माना गया है। अमो अहम अस्मि सा त्वम, साम अहम अस्मि ऋक् त्वम, द्यौ अहम पृथ्वी त्वम, ता वि संभवा तजयामा वही। अमो अहम अर्थात मैं पति हूँ, सा त्वम तुम पत्नी हो, साम अहम मैं साम हूँ, ऋक् त्वम तुम ऋक् हो, द्यौ अहम मैं आकाश हूँ द्युलोक हूँ, पृथ्वी त्वम तुम पृथ्वी हो, ता वि संभवा हम सब साथ बढ़ें और प्रजा वाले हों, प्रजया मा वही और प्रजा वाले हों, मतलब हम इस संसार का भरण पोषण करें। जिस प्रकार ऋग्वेद के मंत्र ऋचा यजुर्वेद के मंत्र यजुंशी कहते हैं, उसी प्रकार सामवेद के मंत्रों को सामानी कहते हैं। सामवेद में ऐसे मंत्र मिलते हैं जिससे यह प्रमाणित हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि वैदिक ऋषियों को ऐसे वैज्ञानिक सत्य का ज्ञान था जिसकी जानकारी आधुनिक वैज्ञानिकों को सहस्राब्दियों बाद प्राप्त हो सकी है। ऐसा कहते हैं कि हमारे जो वैदिक ऋषि थे, वेद काल में जो ऋषि हुए हैं, उन्होंने इतनी साधना की थी कि उन्हें पहले से ही ये साइंटिफिक ट्रुथ की नॉलेज थी, जिसकी जानकारी, जिसकी इंफॉर्मेशन आज के साइंटिस्ट जो हैं वो थाउजेंड सेंचुरीज के बाद उनको मिल सकी है, प्राप्त हो सकी है। उदाहरणतः जैसे कि इंद्र ने पृथ्वी को घुमाते हुए रखा है, कहते हैं कि इंद्र ही पृथ्वी को घुमाते हैं। चंद्र के मंडल में सूर्य की किरणें विलीन होकर उसे प्रकाशित करती हैं। चंद्र के मंडल में मून ऑर्बिट में सूर्य की किरणें सन रेज विलीन होकर उसमें लुप्त हो जाती हैं, उसमें उसे प्रकाशित करती हैं, उसको इल्यूमिनेट करती हैं, उसको लाइट देती हैं। यह अग्नि द्युलोक से पृथ्वी तक संव्याप्त जीवों तक का पालन करता है। यह अग्नि, यहाँ पर अग्नि देवता को बहुत ज़्यादा संबोधित किया जा रहा है, तो यह अग्नि का अर्थ होता है अग्नि देवता, जो है द्युलोक से पृथ्वी तक, मतलब आकाश से धरती तक संव्याप्त जीव, जितने भी जीव जंतु फैले हुए हैं, संव्याप्त सम्यक रूपेण व्याप्ता, संव्याप्त जो अच्छी तरह से जगह जगह पे फैले हुए हैं, उन सभी जीवों का पालन करता है, उनको पालने वाले हैं, मतलब उनको शक्ति उन्हीं से मिलती है, ऐसा कहते हैं। वेद के उद्गाता गायन करने वाले थे जो कि सामक कहलाते थे, सामगान करने वाले को सामक कहा जाता है। उन्होंने वेद गान में केवल 3 स्वरों के प्रयोग का उल्लेख किया है, जो उदान अनुदान तथा स्वरित कहलाता है। ये म्यूजिकल टर्म्स है। नारदीय शिक्षा ग्रंथ में सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन मिलता है। नारदीय शिक्षा ग्रंथ हमारे जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, जिससे हमें नॉलेज मिलती है और जहाँ पर हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, वहाँ पर सामवेद की गाने का तरीका, किस तरह से वो गाया जाएंगे, मंत्र किस तरह से उच्चारित होंगे, क्या उनकी गति हुई, इसका वर्णन भी मिलता है। सामगान और सामान्य नोट, सामान्य स्वर में बहुत अधिक समानता है। सामगान का क्रम होता है मध्यम, गंधार, ऋषभ, सडज, धैवत, निषाद, पंचम। आधुनिक हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत स्वरों के क्रम में सा रे गा मा पा धा नी सा के नाम से जाना जाता है। सा मतलब सडज, रे ऋषभ, गंधार गा, मध्यम मा, पंचम प, धैवत ध, निषादनी। सामगान अधिकतर ज़्यादातर पितरों के लिए पूजा करते समय गाया जाता था, जो कि चंद्रलोक में रहते थे। ऐसा कहते हैं कि जो पितर, जो हमारे पूर्वज हैं, जब वो इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं तो वो चंद्रलोक में रहते हैं, तो उनके लिए जो पूजा की जाती है, जब सुना होगा आप लोगों ने श्राद्ध के समय में अपने पितरों के लिए सभी लोग तर्पण करते हैं, तर्पण मतलब उनके लिए विशेष एक पूजा की जाती है जिसको तर्पण कहा जाता है। तर्पण करते समय पिंड दान दिए जाते हैं, उस समय जो पूजा करते हैं और जो मंत्र बोले जाते हैं, जो सामगान होता है, वो ऐसा कहते हैं कि वो पितर चंद्रलोक में रहते थे। महाभारत के शांति पर्व में जब भीष्म के लिए क्रिएशन सेरेमनी हो रही थी, उस समय दुंदुभी, वेणु और वीणा बजाए जा रहे थे। महाभारत, जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत पर्वों में बटा हुआ है, तो महाभारत के जो शांति पर्व है उसमें भीष्म के लिए क्रिएशन सेरेमनी हो रही थी। आप लोगों को मालूम ही होगा कि भीष्म जो है राजा शांतनु और गंगा के पुत्र हैं। राजा शांतनु ने जब गंगा से विवाह किया था तो उन्होंने उनसे ये वचन लिया था कि वो उनकी संतान के विषय में नहीं पूछेंगे, और गंगा ने 7 संतानों को गंगा में बहा दिया। जब 8वें भीष्म थे तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा से कहा कि इस पुत्र को रहने दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं रहने देती हूँ, लेकिन समय आने पर मैं इस पुत्र को दूंगी। और उस समय उन्होंने उसका नाम देवव्रत रखा था। तो उस समय जब ये सब हो रहा था तो ये जो वाद्य बजाए जा रहे थे वो दुंदुभी थे, अर्धनड्रम, वेणु और वीणा आदि। संपूर्ण सामवेद में सोमरस, सोम देवता, सोमयाग, सोमपान का महत्व अंकित है। संपूर्ण मतलब सारे सामवेद में यहाँ पर सोमरस की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। सोमरस होता है जो एक सोम पौधा होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके रस निकालते हैं और उसमें दूध मिलाया जाता है और कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं और उसको सोम देवता को समर्पित किया जाता है, उनके निमित्त बनता है। सोमयाग, सोम यज्ञ में सोमपान, मतलब उनको सोमपान कराया जाता है, उसका महत्व अंकित है, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस मार्क्ड है वहाँ पर। सोम प्रधान वेद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सोम की बहुत ज़्यादा चर्चा है। लोगों में एक भ्रांत धारणा है कि भारतीय संगीत में स्वरलिपि नहीं थी। लोगों में ये एक गलत मत बना रखा है, लोगों ने उनका गलत विचार है कि हमारे इंडियन म्यूजिक में स्वरलिपि नहीं थी, कि वहाँ पे नोटेशन नहीं थी, और यह यूरोपीय संगीत का परिधान है। कहते हैं कि हमने ये जो स्वरलिपि है ये यूरोप से ली है, उनकी देन है, जबकि ऐसा नहीं है। सामवेद के गान के लिए ऋषियों ने पूरी स्वरलिपि कर ली थी जो कि सबसे पुरानी है। हमारे जो पुराने ऋषि थे, जब वेदों के समय में जो ऋषियों ने अपनी स्वरलिपि बनाई थी वो सबसे पुरानी है, और वे आज भी उसी रूप में गाए जाते हैं, मतलब जो स्वरलिपि उन्होंने बनाई थी वो उसी रूप में गाते हैं। और उनकी स्वरलिपि संख्यात्मक है, मतलब वो जो उनके नोट्स हैं वो न्यूमरल हैं, यानी 1 से 5 के भीतर की जो पहली संख्या होती है वो वाले हैं उसमें। यहाँ ये भी बताया गया है कि देवताओं ने यह संसार बनाया और सामगान ने इसे जीवन दिया। ऐसा कहते हैं कि यह संसार देवताओं ने बनाया, क्योंकि हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनका वर्णन बार बार इसी बारे में आता है कि यह संसार उनकी रचना है, और सामगान ने इसे, जब सामवेद के मंत्र थे उन्होंने इसे जीवन दिया, मतलब जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं उनको जीवन साम गायन से, साम के गीतों से मिलता है। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी है, और ये प्रोसेस जो है वो साइंटिफिक रूप से भी प्रूव्ड है, ऐसा कहते हैं। जैसे मनुष्यों को खुशी पहले नोट से मिलती है, संगीतमय वातावरण बनते ही मनुष्य खुश हो जाते हैं। गंधर्वों को दूसरे नोट से खुशी मिलती है, जो गंधर्व गण हैं, गंधर्व जो हैं वो इंद्र की सभा में उनका बहुत वर्णन आता है, जिक्र आता है, उनके बारे में बहुत बताया जाता है, उनको दूसरे नोट से खुशी मिलती है, जब दूसरा नोट आता है तो वो खुश हो जाते हैं। तीसरे नोट से राक्षसों को खुशी मिलती है, चौथे नोट से पशुओं को खुशी मिलती है, और अतिस्वर जो है वो औषधीय पौधों को खुशी देते हैं, हमारे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको भी खुशी मिलती है जब उनके आसपास म्यूजिक बजता है। तो ओ मग्न आया ही वीत ये घृणानो हव्यदात ये निहोता सत्सि बर्हिषि। हे अग्नि, ओम अग्नि, हम उपासकों ने, हम भक्तों ने उत्तम ज्ञान पदार्थ की प्राप्ति के लिए स्तुति की है। हमने उत्तम मतलब बेस्ट ज्ञान नॉलेज पदार्थ मटेरियल, कि हम अच्छे से अच्छा ज्ञान पाएं और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिले, प्राप्त हो मिले, उसकी स्तुति की है। मतलब हम उन आपको प्रे करते हैं, आप हमारे मन मंदिर में बैठकर दुख दूर कीजिए, आप हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखें और हमें मानसिक शांति दें, खुशी दें, ताकि हमारे दुख दूर हो जाएं। ओम अग्निनारथिम अश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। हे बल यश पुष्टि के प्रदाता, यश संवीरवत मतलब हे बल स्ट्रेंथ, यश कीर्ति फेम पुष्टि पोषण देने वाले हो, ऐसी कृपा करो कि मैं सुख संपत्ति का उपभोग दिन प्रतिदिन कर सकूं। आप हम पर इतनी दया रखिए कि हम सुख संपत्ति सभी ऐश्वर्य हैं, धन हैं, इनका उपभोग इनका भोग कर सकें, कि हर रोज़ हम आराम से जी सकें, कि हमें सब चीज़ें अच्छे से अच्छी मिलें और हम इतने सक्षम हो जाएं, हम इतने कैपेबल हो जाएं। ठहरते हैं कुछ पल के लिए, शीघ्र लौटेंगे। एटिमोलॉजी व्युत्पत्ति अर्थात शब्दों की विशेष उत्पत्ति में आपका पुनः स्वागत है। आइए इस सप्ताह के कुछ नामों के अर्थ का विश्लेषण करें। आरती, आरती शब्द तमिल में भी आता है आरती, और ये हिंदी और मराठी में भी आता है। और ये आरती जो है, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा का समापन हम आरती करके करते हैं। संस्कृत शब्द से ये आया है आरात्रिक। अब्बास, यह शब्द अरेबिक भी है, पर्शियन भी है और उर्दू भी है। इसका अर्थ होता है ऑस्टियर यानी तपस्वी, और यह जो है प्रॉफिट मोहम्मद अंकल का नाम भी था। अब्दुल, अरेबिक में भी आता है, उर्दू में भी आता है, पंजाबी में भी आता है, पश्तो, उज़्बेक, बंगाली। ये जो शब्द है ये अब और दुल दो शब्दों से बना हुआ है। अब्द का अर्थ होता है सर्वेंट ऑफ दी, और अल का अर्थ होता है पावरफुल, मतलब सर्वेंट ऑफ दी पावरफुल जो होगा उसको अब्दुल कहा जाएगा, जो शक्तिशालियों में पावरफुल होता है और ज़्यादा पावरफुल होता है। आभा, यह हिंदी नाम है जिसका अर्थ होता है स्प्लेंडर लाइट, और यह शब्द संस्कृत से ही आया है। अभय, यह भी हिंदी नाम है, मराठी में भी है, इसका अर्थ होता है फियरलेस, जिसको कोई डर ना हो वो अभय। अभिजीत, अभिजीत शब्द हिंदी में आता है, मराठी में आता है, बंगाली में आता है। यह जो शब्द है ये संस्कृत नाम में स्टार वेगा के नाम पे आता है, इसका अर्थ होता है विक्टोरियस, जो विजय हासिल करता है उसको अभिजीत कहते हैं। अभिजीत, आभिमुख्येन जीता है इति अभिजीत है, और ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार है जो सूर्य के बाद आता है। इसका वर्णन महाभारत के वन पर्व में भी आता है। अभिलाषा, यह हिंदी में आता है और यह संस्कृत शब्द भी है जिसका अर्थ है डिजायर विश। अभिनव, हिंदी नाम है, मराठी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, जिसका अर्थ होता है यंग फ्रेश, और संस्कृत में भी इसको अभिनव ही कहते हैं। अभिषेक, अभिषेक हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, इन सब में ये नाम आता है, और संस्कृत में इसका अर्थ होता है एनॉइंटिंग, मतलब जब हम, आपने सुना होगा जब हम किसी की शिवलिंग वगैरह पे जब हम अभिषेक करते हैं, सिंचित करते हैं दूध से जल से, जब हम उनको चढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं शेक, अभिषेक करना। अबरार, अरेबिक शब्द है, उर्दू शब्द है, इसका अर्थ है वर्चुअस, मतलब गुणों वाला। आदिल, अरेबिक शब्द है, उर्दू शब्द है, जिसका अर्थ है फेयर ऑनेस्ट जस्ट। ये जो आदिल शब्द है इसकी रूट होती है अदाला, जिसका मतलब होता है टू एक्ट जस्टिफाई, जो बिल्कुल सही होता है उसको हम कहते हैं आदिल, और ये बीजापुर के सुल्तान ने भी इस नाम को धारण किया था, उनको भी आदिल कहा गया था। अदिति, अदिति शब्द जो है वो हिंदी है, मराठी है, बंगाली है, कन्नड़ है, इसका अर्थ होता है बाउंडलेस एंटायर, और ये संस्कृत शब्द से आता है, जो हिंदू देवताओं की माता कही जाती है, इसको फर्टिलिटी और गॉडेस ऑफ द स्काई भी कहा जाता है, मदर ऑफ फर्टिलिटी एंड गॉडेस ऑफ द स्काई। आदित्य, यह शब्द अदिति से संबंध रखता है, कि अदिति के पुत्र को हम आदित्य कहते हैं, और आदित्य जो है हिंदी, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल आदि में आता है। और ये भगवान सूर्य का नाम है अदनान। अरेबिक में आता है, टर्किश में आता है, उर्दू में आता है, बॉस्नियन में आता है। इसका अर्थ होता है सेटलर, जो सेटल हो जाता है, मतलब उसको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता। अदनान जो है एक प्रॉफेट मोहम्मद के एंसेस्टर भी कहे जाते हैं। अग्नि जो हिंदी नाम है, और इसका वर्णन तो आज मैंने सामवेद में भी बहुत किया था, जिसका अर्थ होता है फायर, और ये संस्कृत शब्द ही है। हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें फायर गॉड अग्नि देवता को संबोधित करके बहुत कुछ उनके बारे में स्तुति की गई है। और इनका वर्णन ऐसे आता है कि वो लाल स्किन वाले हैं, 3 उनकी टांगे हैं, 7 उनकी भुजाएं हैं और 2 उनके मुख हैं। इस तरह से उनका वर्णन बताया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी हमारी पॉडकास्ट में लिया जाए तो शो नोट्स या डिस्क्रिप्शन में देखें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। स्वस्तिस्तु, कल्याण हो।